सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन् आत्मनि माया बहिर्योद भूतम यथा निद्रया यह साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीदक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतेर हर 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 महादेव। स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पवित्र परिसर में हम लोग भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित प्रबोध सुधाकर नामक ग्रंथ का विचार कर रहे हैं। रोज ही आरंभ में बता दिया जाता है कि इस ग्रंथ में तीन प्रकरण हैं। पहला प्रकरण है वैराग्य का प्रकरण है, दूसरा प्रकरण है बोध का प्रकरण है, और तीसरा प्रकरण है भक्ति का। भक्ति का तो अगले सेशन में चर्चा होगी, इस सेशन तक क्या होगी बोध का। तो बोध भी किसका करना है? जीव जगत और ईश्वर का, तीनों का बोध जरूरी है। जब तक जगत का भी ज्ञान नहीं होगा ना, तब तक भी जगत से आसक्ति दूर नहीं होगी। जिस क्षण जगत आध्यासिक दिख जाए, कल्पित दिख जाए, तो जगत की दौड़ भी अपने आप क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। और जब तक जीव और ईश्वर में भी दोनों का भेद बना रहेगा, ध्यान देना, दोनों को आत्म रूप से एक नहीं समझेंगे, जीव की तरह ईश्वर की सत्ता को भी कल्पित नहीं समझेंगे, है ना। ईश्वर भी क्या है? कल्पना नहीं है। जैसे जीव कल्पित है, ऐसे ईश्वर भी क्या है? कल्पित ही है। तब तक हम एक कल्पना से दूसरी कल्पना में, दूसरी से तीसरी में जाते रहेंगे, ये निश्चित जान लेना। हम मनुष्य हैं तो सोचते हैं देवता सुखी होंगे, या हम शूद्र हैं तो सोचते होंगे ब्राह्मण सुखी होगा, क्षत्रिय सुखी होगा। तो मरने के बाद क्या बनना चाहते हैं? ब्राह्मण या क्षत्रिय। और ऊंचे उठे तो इंद्र, और ऊंचे उठे तो इंद्र भी क्या सुखी है? क्या इंद्र सोचता होगा ब्रह्मा सुखी हैं, ब्रह्मा सोचते होंगे विष्णु सुखी हैं, विष्णु सोचता होगा कौन? शिव सुखी, शंकर सुखी होंगे। कोई काम धाम नहीं, कल मारने का काम है शंकर जी का, आई नहीं किसका। हमें तो कितना खुराफात करनी पड़ती है इस भाई जगत की व्यवस्था को संभालने के लिए, कितने झूठ कपट प्रपंच करना पड़ता बताओ, नहीं करना पड़ता? अरे आपके अपने एक छोटे से घर को चलाने के लिए कितनी बार आपको झूठ बोलना पड़ता है, कितनी बार आपको कोई चीज छिपानी पड़ती है, कहते है ही नहीं मेरे पास, झूठ है ही नहीं, कपट है नहीं, बता। इसलिए भगवान विष्णु को क्या करें, जगत की रक्षा करना है ना, तो इनको कपट के बिना काम चल ही नहीं सकता है। इसलिए शंकर जी को कपट करने की कोई आवश्यकता, क्योंकि उनको तो क्या करना है, पैसे माफ करना है भाई, नाश करने में क्या कपट करना है, बचाने में तो कहीं न कहीं से कोई दूसरा छीन न लेवे कुछ करना है, और उत्पत्ति में भी थोड़ा क्रिया है, लेकिन बनाना बहुत टिपिकल नहीं है कि कठिन है, किसी चीज का भी बना देना बहुत कठिन काम नहीं है, लेकिन बनाने के बाद उसकी व्यवस्था को संभालना वो बहुत कठिन काम है। मैं देखा हरिद्वार में कितने आश्रमों में हैं, कितना घर बनवा दो, ये उस घर को संभालना व्यवस्था करना वो क्या है, कठिन है। तो उत्पत्ति भी कठिन नहीं है, विनाश भी कठिन नहीं है, कठिन क्या है नहीं लगता है? हमें तो यही लगता है घर बनाना आसान है, लेकिन घर को मेंटेन करना संभालना क्या है, बहुत कठिन है। तो विष्णु सोचते होंगे कौन सुखी है, बोलो शिव सुखी हो गया, लेकिन सुख कहीं भी खोजो दुनिया में कहीं दिखेगा क्या, किसी भी उपाधि को छोड़ दो और दूसरी उपाधि को ग्रहण कर लो आपको सुख नहीं मिलेगा। सुख तो अपने नेत नेत क्या है, न कर्मणा न प्रजया न धनेन, त्यागेन एके, त्याग माने छोड़ के कहां जाओगे, लेकिन नेत नेत करके सबका निषेध कर दो, सारी उपाधियों का क्या कर दो छोड़ दो। इस गहरी नींद में सुषुप्ति में लगभग लगभग सारी उपाधि छूट जाती, एक बची रहती है अज्ञान रूपी उपाधि। लेकिन मैंने बताया ना अज्ञान, जब तक अज्ञान में जो संस्कार हैं, जब तक वो कारण अवस्था में पड़े रहते हैं, बीज अवस्था में पड़े रहते हैं, तब तक दुख नहीं देते हैं, लेकिन जैसे वो अंकुर पैदा होते हैं या वृक्ष बन जाते हैं, संसार का सारा दुख व्यक्ति को दुखी करना शुरू कर देता है। तो उसमें भी एक उपाधि है, कौन सी, अज्ञान, और अज्ञान में जो रहने वाला कौन है न बीज, क्योंकि वो बीज है तभी तो अंकुर फूटता है और तभी तो क्या बनता है, वृक्ष बनता है। यदि अंकुर ही बीज ही समाप्त हो जाए, अज्ञान ही समाप्त हो जाए, तो चाहे आपकी जागृत हो, चाहे स्वप्न हो, चाहे सुसुप्ति हो, उससे कोई फर्क आपको पड़ेगा, आपका चित्त जैसे सुसुप्ति में रहता है वैसे ही शांत कहां रहेगा, जागृत में भी रहेगा, वैसे ही शांत कहां रहेगा, स्वप्न में भी रहेगा। कैसा शांत, जैसा सुसुप्ति में रहा है। लेकिन जैसे अज्ञान जब तक नाश नहीं होगा, तो जागृत के संसार को देख करके आपके भीतर सूक्ष्म भोग के जो संस्कार मौजूद है ना, वो संस्कार अंकुर बन जाएंगे और एक कामना पैदा हो जाएगी, उस भोग, वह भोग हमें मिल जाए, दूसरा कोई लेने न पावे। कब तक, जब तक ये अज्ञान बचा रहेगा तब तक। तो एक उपाधि वहां भी है सुषुप्ति में, लेकिन वो उपाधि भी छूट जाए तो आप हमेशा कहां रहोगे, आनंद रूप ही रहोगे, आनंद। तो वह उपाधि को हटा करके एक बार उस आत्मा का साक्षात्कार करना है, और करने के बाद उसके ऊपर कोई उपाधि आवे अथवा न आवे, उस उपाधि के आने न आने से उसके ऊपर कोई फर्क पड़ता है। जैसे मैंने आकाश की असंगता का ज्ञान कर लिया, किसकी, आकाश की असंगता का ज्ञान कर लिया, अब कितना भी बारिश होवे क्या चिंता होगी, क्या आकाश कहीं गीला हो गया होगा बेचारा, भाई कितना बारिश होती है धरती तो गीली हो जाती है, लेकिन आकाश गीला हो जाता है क्या, और आकाश के उस गीलेपन को सुखाने के लिए क्या कोई वो उष्मा चाहिए क्या, वो गीला हुआ ही नहीं है, आकाश कितना भी नीला दिखे, लेकिन बुद्धि में पक्का निश्चय हो गया कि आकाश नीला, तो चाहे नीला दिखे चाहे पीला दिखे चाहे काला दिखे में क्या फर्क पड़ता है, तो संसार किसी भी रूप में दिखे अब उसको कोई फर्क पड़ता है ही नहीं, किसको, ऐसे ज्ञानी को। तो लेकिन एक बार अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो भाई, एक बार पर्दे का ज्ञान हो गया तो पर्दे पे कितनी तस्वीरें आ रही हैं, आमे जाए, अब आपको कोई सुख दुख होगा क्या, कोई आनंद आएगा क्या, लेकिन जो अज्ञानी है वो क्या करेगा, बारिश होगी अज्ञानी मजा नहीं लेगा, अज्ञानी तो रोएगा, हमने देखा है अज्ञानी खूब रोता है, सीता जी का जब हरण होता है ना तो टीवी देखने वाले क्या करते हैं, रोते हैं, अब बताओ सीता जी रो रही थी क्या? वो कौन सी? टीबी वाली सीता जी, उनको तो रोने के लिए करोड़ों रुपए मिले हैं और आपको रोने के लिए कुछ मिला क्या? लेकिन क्या करोगे भाई, अब तो रोते हो, आप भी रोते हो। कोई उसमें वो दिख जाता है गलत व्यक्ति, तो लोग गलत उच्चारण भी कर देते हैं, शब्द बोलते हैं। ये वो व्यक्ति उसी तरह मूग है, उसी तरह ज्ञानी है। जैसे एक कथा आप लोग सुने हो, एक गांव का देहाती व्यक्ति बरसात के दिन में आया मुंबई, सोचा आया हूं तो कोई फिल्म देख लूं, तो गया हॉल में फिल्म देखने के लिए। तो फिल्म में बड़ी तेज बारिश हो रही थी, तो उसने अपना छाता क्या किया, खोल लिया और छाता लेके बैठ गया। पड़ोसी से कहा, भाई बारिश हो रही है, थोड़ा आजा, नहीं भीग जाएगा तू। अब बताओ उसका वो कहना आपको हंसी आ रही नहीं? हंसी आ रही है, पक्का हंसी आ रही ना? उसको समझदार कहोगे मूर्ख कहोगे? निश्चित मूर्ख कहोगे ना? उसी तरह से ध्यान देना, जब फिल्म में कोई दिखी, मान लो लड़के बजाते हैं, है? तो वो लड़का भी उतना ही मूर्ख है जितना वह व्यक्ति जिसने छाता खोला था। दोनों के मूर्खता में तनिक भी क्या है अंतर, बताओ, बोलो भाई। क्योंकि वहां जो तुम एक्शन कर रहे हो वह देख रहा है या देख रही है क्या? उसको कुछ पता भी क्या मेरे को देख करके लोग वो ऐसा कर रहे हैं? लेकिन आप ही उसमें अव्यक्त होकर के वो कर रहे हो ना। तो उस बुद्धे व्यक्ति से जो गांव का देहाती था जिसने छाता खोल लिया, उसकी मूर्खता में और आपकी मूर्खता में कोई अंतर नहीं है। और बताऊं, और जो रो रहा है वो भी उसी तरह से मूर्ख है जितना वो देहाती है, ये भी जान लेना। वो भी उसी तरह से उतना ही अज्ञानी है जितना कौन है, क्योंकि कल्पित सृष्टि को उसने क्या मान लिया, सत्य मान लिया। और सत्य मानकर किसी से राग और किसी से क्या कर लेता है, द्वेष कर लेता है। अब रावण का काम ही है वहां बिलियन करना। लेकिन बेचारा रावण जो बना हुआ था, बहुत राम का भगत था, अच्छा आदमी था, अरुण त्रिवेदी ने क्या नाम था, अरविंद त्रिवेदी, अरुण गोविल तो राम। हो सकता है जो राम बना था वो नंबर एक का दुष्ट हो सकता है, मैं नहीं कहता। और जो रावण बना है वो बहुत क्या है, राम का बहुत बड़ा भक्त हो, लेकिन वहां उसका क्या है, अभिनय है। और जैसे अभिनय समझ लेगा तो व्यक्ति रावण को भी पुरस्कार देगा और राम को भी पुरस्कार देगा, नहीं देगा? बेस्ट खलनायक कब ले, तो सारा संसार जिसकी दृष्टि में क्या हो गया, एक अभिनय हो गया। हर व्यक्ति को कोई न कोई यहां क्या मिला हुआ है, एक कर्म पात्रता मिली है। हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों को क्या कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। अब जो व्यक्ति अपने रोल को अच्छा कर लेगा, जो निर्देशक है ना, उसको अगली फिल्म में नायक बना देगा, नहीं? और जो व्यक्ति अच्छा रोल नहीं करेगा, अगली फिल्म में कांदा ले लो, मूंगफली ले लो, ये भी बेचने वाला भी काम तो लगेगा, नहीं लगेगा? यहां तक कि उस फिल्म में कौवा कबूतर कुत्ते का भी काम आता, नहीं आता है? नहीं आता। तो वो जो निर्देशक है, इतनी बड़ी जो फिल्म चला रहा है डायरेक्टर, यदि आपने जो वर्क मिला है उस वर्क को लीला की तरह ही अच्छी तरह से कर लिया, तो अगली फिल्म में आप ब्रह्मा विष्णु महेश भी बन सकते हो, यदि बनने की इच्छा है तो। और डायरेक्टर बनना तो डायरेक्टर बन जाना अच्छा। इसलिए जितने फिल्म इंडस्ट्रीज वाले हैं ना, बाद में एक्टिंग कर करके क्या करते हैं, थक जाते हैं, और फिर क्या बन जाते हैं, डायरेक्टर बन जाते हैं, निर्देशक दूसरे प्रोड्यूसर बनते हैं, चलाते हैं, प्रोड्यूसर या डायरेक्टर जो भी बनते होंगे। उसी प्रकार से हर एक्टिंग करके ब्रह्मा विष्णु महेश बनकर के भी आप क्या करो, जब थक जाते हो तो क्या बन जाते हो, साक्षी। यहां क्या बन जाते हो, साक्षी, असंग, निर्लिप्त, बस देखते हो। क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर को भी सुख दुख होता है ज्यादा, क्योंकि उसकी फिल्म न चली तो प्रोड्यूसर मैंने जिसने पैसा लगाया है, इन्वेस्ट किया है, उसका नाम है ना प्रोड्यूसर, तो उसको बड़ा होती रहती है। लेकिन डायरेक्टर को अपना काम किया बस, इसके बाद निश्चिंत हो जाता है। चलो जो भी है, थोड़ा बहुत चिंता तो उसको भी रहती होगी कि चले। तो आपने अच्छा काम किया तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी बन सकते हो, और बुरा काम कर दिया तो क्या बन सकते हो, कुत्ता, कौआ, उल्लू, सूकर, ये भी फिल्मों में यहां तक ये क्यों सा ये मकड़ी वाली भी फिल्म बनती है। मकड़ी को कभी काम आता है कि कोई बहुत पहले देखा था भी। तो सबका रोल किसके यहां है, उस परमात्मा का रोल की कोई कमी? तो अब आपको कौन सा रोल करना है आप जान लेना। चले आगे हम, तो आप जानना कि सारे रूप सारे रोल मेरे ऊपर ही चल रहे हैं। जितनी तरंगे हैं वो तरंगे किसके ऊपर चल रही हैं? समुद्र के ऊपर ही हैं, जल के ऊपर ही। जल रूपी अधिष्ठान न होवे तो कोई तरंग नहीं, कोई बुलबुला नहीं, कोई फेन नहीं। ऐसे जितना भी संसार कर्म कर रहा है उस कर्म का जो मूल शक्ति देने वाला है वह कौन है? आत्मा ही है। यदि आत्मा, वही आत्मा कौन हूं मैं। इसलिए ज्ञान जो होता है तीन तरह से होता है, तीन रूप से होता है। उसी मैंने बताया ज्ञान चार स्टेज में होता है। एक ज्ञान कितनी अवस्था में होता है? चार अवस्था में होता है। पहला अवस्था ज्ञान का है शिष्य अपनी 25% 25% ज्ञान गुरु आपको देता है। हमारी लिमिटेशंस हमारी सीमाएं, आपको ज्ञान देने की मात्र कितना है? बस इससे 25% से हम ज्यादा आपको नहीं दे सकते। 25% शिष्य अपनी मेधा से प्राप्त करता है, अपनी लगन से प्राप्त करता है, अपने उत्साह से प्राप्त करता है। तो शिष्य 25% कमा सकता है अपनी लगन से। कितना बन गया? नहीं भाई देखो, लगन क्या है? कथा हुई तुरंत आ गए, आने के बाद थोड़ा उस पर क्या किया, चिंतन भी किया। अब जो 8:30 तक कथा है, 8:15 तक आ रहा है, 8:25 तक आ रहा है, हाजिरी जिसको देना उसको लगन थोड़े बोलते हैं। वो तो क्या करें, घर में बैठे बैठे टाइम पास नहीं हो रहा, समय मिल गया तो घूमते घामते उधर से किधर चले आए, प्रेमपुरी थोड़ी देर बैठे, 2-4 घंटे गप सप इधर उधर हुई, फिर अपना चले गए इधर घूमते घामते कहीं, जो टाइम पास है। ये क्या है? उत्साह लगन के साथ। तो 25% शिष्य अपनी मेधा से अपनी लगन से प्राप्त करता है। 25% ज्ञान आपने कितना हो गया? 50 हो गया। अब 25% आपका भीतर जो ज्ञान गया है ना, कहते समय पाकर के अपने आप पैदा हो जाएगा। समय माने हर व्यक्ति के भीतर के कलमश पाप विकार अलग अलग हैं। आपने ज्ञान डाला है, ज्ञान डाला है तो ज्ञान डालने के बाद वो हर कलमश को पाप को क्या करेगा? हटाएगा। अब जिसका जितना ज्यादा पाप होगा उसको उतना टाइम लगेगा नहीं लगेगा बता? एक कपड़ा जो हम धुलते हैं तो जरा सा साबुन डाला, यूं किया और निखर गया, तो कितनी देर उस कपड़े को साफ करने में लगा? और एक हफ्ते में उसी कपड़े को साफ करो तो क्या करना पड़ेगा? थोड़ा गर्म पानी में कपड़े को डालो और कपड़े को कितनी देर भिगोना है? आधा एक घंटा भिगोना है और फिर उसपे थोड़ा डंडे मुगदर भी चलेंगे तब जाकर कपड़े क्या हो जाएंगे? उस कपड़े को धुलने में क्या लगेगा? तो आपके भीतर के जो ज्ञान गया है वह ज्ञान आपके भीतर की वासनाओं को हटा तो रहा है, लेकिन किसके भीतर कितनी वासनाएं हैं, कितना हटा चुका है, तो वो समय पाकर के अपने आप ज्ञान क्या हो जाएगा? परिपक्व बाहर निकल जाएगा। कितना ज्ञान हो गया? कितना परसेंट? इसलिए मैंने देखा किसी किसी को ज्ञान तो बहुत जल्दी आ जाता है सुनने मात्र से, और किसी को सुन करके मनन करना पड़ता है, निध्यासन करना पड़ता है, एक जन्म दो जन्म तक लग जाते हैं, क्योंकि उसके भीतर जितने कलमश हैं पाप हैं उन पापों को हटाने में बड़ा वक्त लग जाता है। अच्छा, चौथा ज्ञान है आपस में विचार विमर्श करके। अब जो ज्ञान हो भी गया है उस ज्ञान को जो निश्चय करना है तो क्या करना है? आपस में क्या करना है? हाँ, लेन देन, जिसे आप किसी भी विषय ओ डिस्कशन आजकल हो रही ना, टीवी में डिस्कशन का ज्यादा जोर चल रहा है। जो भी चैनल खोलो, न्यूज चैनल, सब जगह क्या हो रहा है? किसी भी विषय पर, किसी भी मुद्दे पर क्या हो रहा है? डिस्कशन कर रहे हैं। तो आप भी आत्मज्ञान के विषय में क्या करो? थोड़ा चर्चा तो करो, डिस्कशन करो, लेकिन आत्मज्ञान के विषय में कोई डिस्कशन करने के लिए तैयार होता ही नहीं है। हाँ, दुनिया क्रिकेट के बारे में, दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में खूब डिस्कशन करोगे, लेकिन आत्मचिंतन के विषय में क्या करते हैं? लेकिन जो मौन हो गया उसकी तो बात छोड़ दो, डिस्कशन के पहले की अवस्था का नाम है, और डिस्कशन करके एक निश्चय निकल गया और फिर तो क्या हो जाओ, मौन हो जाओ, फिर कुछ बोलने की आवश्यकता रह ही ना जाए। तो एक ज्ञान चार स्टेज में हमारे जीवन में क्या करता है, उतरता है। अब यहां जो ज्ञान उतर रहा है वहां बताए तीन तरह से होता है। एक ज्ञान है कौन सा, अपरोक्ष ज्ञान, नहीं परोक्ष, पहला क्या है परोक्ष, दूसरा है प्रत्यक्ष, और तीसरा है अपरोक्ष, साक्षात अपरोक्ष। तो परोक्ष क्या है, उदाहरण गुड़ मीठा है, गुड़ की भेली क्या है मीठी है, ये बस सुना है, मैंने देखा नहीं है, चखा भी नहीं है, खाने की बात छोड़ दो भी देखा ही नहीं है, गुड़ की भेली होती है कि गुड़ कैसा होता हम जानते ही नहीं है, लेकिन गुड़ मीठा होता है सुना है। तो आत्मा कैसी है, सच्चिदा नंद स्वरूप है, असंग है, निलिप्त है, व्यापक है, ये हमने जान लिया कहां से, शास्त्र से अथवा गुरु से। तो शास्त्र हमेशा कौन सा ज्ञान कराता है, परोक्ष ज्ञान कराता है, शास्त्र के लिमिटेशन है, सीमा है। अब गुरु क्या करता है, जो परोक्ष ज्ञान है उसको प्रत्यक्ष कर देता है। तो युक्ति से हमें प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है, युक्ति से हम उस ज्ञान को जो समझते थे उस ज्ञान को हम क्या कर लेते हैं, प्रत्यक्ष कर लेते हैं, प्रत्यक्ष देख लेते हैं। तो कई प्रकार की युक्तियां आपको कल समझा दी गई, समझा ना, युक्ति जैसे आकाश एक है कनेक है, आकाश एक है ना, इन एक ही आकाश कितने दिख रहे हैं, अनेक दिख रहे हैं, 50 जल के घड़े भरे हैं, तो 50 जल के घड़ों में परछाई पड़ती है तो 50 आकाश दिखते हैं, लेकिन 50 आकाश हो जाते हैं क्या, आकाश कितना रहता है, ऐसे चैतन्य कितना है, एक ही है, वो 50 अंतःकरणों में पड़ जाते हैं तो 50 सा दिखता है, तो दिखने तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वो चैतन्य कौन है, तो कौन सा असली वाला है, शुद्ध है, ध्यान आकाश तीन है ना, एक जल से घिरा हुआ आकाश है, दूसरा जल से जल में प्रतिबिंबित आकाश है, और तीसरा आकाश है शुद्ध आकाश है। तो आकाश कौन सा है बताओ, शुद्ध वाला ही असली है नहीं, क्योंकि परछाई तो झूठा होता है, और जो जल से घिरा हुआ आकाश है ध्यान देना, तो वो जल भी ना असली वाला जल नहीं है, वो जल है मृग मरीचिका का जल है। कौन सा जल, तो मृग मरीचिका का जल किसी को घिरेगा क्या, तो अंतःकरण भी जो पैदा हुआ है वो अज्ञान से पैदा हुआ है, अज्ञान से पैदा हुआ अंतःकरण से जो चैतन्य घिर गया है तो चैतन्य को घेरने वाला कोई माई का लाल, जो मृग मरीचिका का जल है उस जल को, वह जल क्या पृथ्वी को गीला करेगी क्या, ऐसे अंतःकरण भी किसमें, अंतःकरण भी उस चैतन्य में बंटवारा करने वाला, अब कर आपके मन में बंटवारा हो जाता है क्या करें, ये भारत का आकाश है, ये किसका आकाश है, पाकिस्तान का आकाश है, और भारत का आकाश और पाकिस्तान का आकाश के बीच में कोई लकीर खींची है क्या, लेकिन बस बटा हुआ है, ऐसे ही बटा हुआ है, हमारा अंतःकरण तुम्हारा अंतःकरण, अंतःकरणों ने अंतःकरण मन की मान्यताओं ने बांट लिया है, इसलिए हमारा अंतःकरण आपका अंतःकरण मिल जाए तो दोनों की पट जाती है, नहीं हो जाती, दोनों हम दो शरीर आत्मा एक है, आत्मा ने विचार एक है, तो उनका वहां पट जाती है, जिसके अंतःकरण में हमारा क्या हो जाए, विद्रोह हो जाए, वहां हमारी पटती, अब नेपाल से हमारी पट रही है तो कोई याद आ जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान से हमारा क्या चल रहा है, विचारों का मतभेद है, इसलिए मैं वहां नहीं जा सकता, वहां ये नहीं आ सकते, मतभेद है। तो ये सारा मतभेद किसके कारण है, आपकी मन की मान्यताओं के कारण मतभेद है, लेकिन वास्तव में कोई मतभेद है ही नहीं किसी के भीतर। ऐसे कल वृक्ष के ओ किसके माध्यम से, मैं क्या क्या काम कर रहा हूं उसके माध्यम से बताया, वो भी युक्ति समझ में आ गई। कुछ क्रियाएं बुद्धि के साथ होती हैं और कुछ क्रियाएं बुद्धि के बिना होती हैं, लेकिन शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उन सारी क्रियाओं का आधार कौन है, आत्मा मैं हूं। ऐसे वृक्ष में जो क्रिया हो रही है और दूसरे आम के पेड़ में जो क्रिया हो रही है, बबूल के पेड़ में जो क्रिया हो रही है, सब क्रियाओं का आधार कौन है, वही शक्ति है, और उसी इस पेड़ में भी वही क्रिया हो रही है, किस पेड़ में, शरीर में, तो वही कौन है, मैं हूं, तो मैं ही सबके भीतर बैठ करके सबकी इंद्रियों का संचालन करने वाला, सबके अंतःकरण में प्रकाशित करने वाला कौन हूं? मैं हूं। ऐसे कई युक्तियों से सिद्ध कर दिया गया। क्या 119वां श्लोक ले लेना, 119 कल हो गया था लेकिन फिर से एक बार देख लो। तद इदम य एव मार्यो वेद ब्रह्माहमस्मीति स इदम सर्वं च स्यात् तस्य हि देवाश्च नेस्ते अभूत्यै। तद माने वह, वह कौन? परोक्ष, परोक्ष रूप से जिसका हम लोगों ने चिंतन 94 श्लोक में किया था, पहले आप में होगा नहीं, बहुत पहले हम लोगों ने कर लिया था 94 श्लोक में। कौन सा? अच्छा, इदम माने यह, यह माने प्रत्यक्ष। जो कल तक कहां था? परोक्ष था, आज क्या हो गया? प्रत्यक्ष हो गया। उसी को, या माने जो कोई आर्य, आर्य माने श्रेष्ठ पुरुष है, श्रेष्ठ कोई पुरुष इस प्रकार वेद एवं वेद इस प्रकार जानता है, कौन? अहम ब्रह्म अस्मि, मैं कौन हूं? ब्रह्म हूं। जो तद था वह इदम हो गया, अब इदम के बजाय वही क्या हो गया? अहम हो गया। तीन चीजें हो गई, तद, इदम, अहम। तो पहले उस ब्रह्म को हमने किस रूप से जाना था? तद रूप से। बाद में गुरु के द्वारा उस ब्रह्म को हमने कैसे जाना? इदम रूप से, प्रत्यक्ष तया। अब बाद में आप अपने आप चिंतन करके हमने उस ब्रह्म को कैसे जाना? अहम रूप से। तो अब हमें उस ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान हुआ नहीं हुआ? तद इदम अहम ब्रह्मास्मि, वह, यह, ब्रह्म, अहम अस्मि, मैं हूं, एवं यह आयुर्वेद, जो कोई श्रेष्ठ पुरुष इस प्रकार से जानता है। अब सोच लेना, जो ऐसा जाने वह व्यक्ति कौन है? श्रेष्ठ है। इसके सब के सब क्या है बोलो? अब आप जानना नहीं बोलेंगे, निकृष्ट है। जो अपने आप को ब्रह्मरूप जान लेवे वह व्यक्ति कौन है? श्रेष्ठ है। स इदम सर्वम च स्यात्, वह सब कुछ हो जाता है। वह क्या हो जाएगा? सब कुछ हो जाएगा। तस्य ही देवाश्च न ईसते, देवाश्च देवता लोग ही माने निश्चय ही, तस्य माने ऐसे ज्ञानी पुरुषों को न ईसते, शासन करने में समर्थ होते ही नहीं है, न ईसते अभूत्यय, अभूत्यय माने अपने स्वरूप से नीचे गिराने में न ईसते समर्थ ही होते हैं। वो व्यक्ति अपने स्वरूप में ऐसा स्थित हो जाता है कि उसको नीचे गिराने में कोई भी व्यक्ति समर्थ होता ही नहीं है। सारे विश्व के रूप में उसकी प्रतीति हो जाती है। जो भगवान ने कह दिया ना, भगवान का भी परिचय क्या है? भगवान अपने आप को एक शरीर में मानते हैं, सब शरीरों में मानते हैं। तो भगवान क्या करते हैं? कहते हैं अहम आत्मा गुदा केसर और कृष्ण देहा आश्रित, क्या बोलते हैं? सर्वभूता से स्थित है। कहाँ रहते हैं? सारे प्राणियों के भीतर में स्थित रहते हैं। इन हमने कृष्ण को कहाँ मान लिया है? वैसे एक शरीर मान लिया। अब भगवान क्या कहते हैं? मैं एक में नहीं हूँ, किसमें हूँ? सारे प्राणियों में मेरी सत्ता है। तो ऐसे जैसे कृष्ण ने उस आत्मा को आत्मसात कर लिया है, आत्मसात करने का मतलब क्या हुआ? सबके रूप में अपने आप को जान लिया है। उसी तरह से यह आर्य, यह श्रेष्ठ पुरुष भी सबके रूप में अपने आप को जान लेता है। वह उस व्यक्ति को यदि देवता भी पराभव करना चाहे, अपने उस स्वरूप से नीचे गिराना चाहे, तो उनके पास इतनी औकात नहीं है, उनके पास इतनी सामर्थ्य है ही नहीं कि वह आपको नीचे गिराने में समर्थ हो पावे। क्यों? क्योंकि जिसको गिराना जो, वो वही बन जाता है ना। अपने आप को कौन गिराएगा बताओ? इसी को बता रहे हैं 120वां श्लोक में। एसाम च भवति आत्मा यो अन्या मथ देवतामुपास्ते अन्यः, अहम अन्यो असौ अन्यश्च इत्थम नो वेद पशुवत स। देखना स माने वह, वह माने कौन, जो सर्वरूप हो गया है, सबके रूपों में अपने आप को देख लिया है। एसाम स माने वह, एसाम भवती आत्मा, उन देवताओं का भी आत्मा बन जाता है। किसका, उनका भी, उन देवताओं का भी आत्मा हो जाता है, अर्थात देव रूप से भी उसकी ही प्रतीति होती है। तो व्यक्ति कभी भी अपने स्वरूप का तिरस्कार नहीं कर सकता। अपने आप को आप छोड़ के कहां रह सकते हो बताओ, अपने आप को आप छोड़ के रखना भी चाहे तो रख सकते हो क्या, दुनिया को छोड़ के तो रख सकते हो, लेकिन अपने आप को त्याग करके आप रखना चाहो तो हम रह नहीं सकते हैं। इसी बात को भगवान शंकराचार्य जी भी कहते हैं। क्या कहा है शंकराचार्य ने, एक ग्रंथ है इनका सत श्लोकी, भगवान शंकराचार्य का एक ग्रंथ है सत श्लोकी, उसमें कहते प्रापश्यत विश्वम आत्मा, जो जीवन मुक्त महापुरुष जब तक प्रारब्ध भोग न समाप्त होवे, मतलब देह में रह करके ही इस सारे विश्व को वह अपनी आत्मा ही समझता है, इस सारे संसार को विश्व को विश्वरूप से देखने का कभी द्रोह नहीं करता है, विश्व को विश्वरूप से नहीं देखता है, बल्कि किस रूप से देखता है, अपनी आत्मा रूप से ही देखता है। जैसे जौहरी जितने भी गहना देखेगा वह गहने को किस रूप में देखता है, सोने रूप में देखता है, उसी प्रकार से यह ज्ञानी नाम रूप जाति गुण क्रिया को छोड़ करके इनको सत्ता देने वाली उस आत्मा पर ही अपनी दृष्टि करता है। ग्वाला जितना भी गाय देखेगा क्या देखेगा, ग्वाला की दृष्टि में दूध ही दिखेगा। हाँ, और डायबिटिक वाला रोगी, बोलो भाई, मुंबई में डायबिटिक की ज्यादा है, क्या देखेगा, सब में उसको चावल खिलाओ, नहीं महाराज जी डायबिटिक है चावल नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाओगे भाई, इसमें चीनी है। हमें तो कहीं खाते हैं तो चीनी दिखाई नहीं देती, हमें नहीं चीनी दिखाई देगी, लेकिन किसको दिखेगी चीनी, डायबिटिक वाले को उसमें भी चीनी दिखेगी। तो जब उसको चीनी दिख सकती है नहीं, किसमें, चावल में, आलू में उसको चीनी दिख सकती है, तो आपको सब रूपों में ब्रह्म क्यों नहीं दिख सकता। जब ग्वाले को सबके रूपों में क्या दिख जाती है, दूध दिख जाता है गायों में, क्या कसाई को जो भी पशु देखता है, देख करके वो क्या देख लेता है, मांस देख सकता है, और नाई, ओ नाई नहीं, क्या बोलते हैं, दर्जी जितने भी कपड़े सिलते हैं उन सारे कपड़ों में क्या देखता है, सूत देख लेता है। तो बताओ आप नाम रूप जाति गुण क्रिया को छोड़ दो तो सबके भीतर सत्ता देने वाले किसको, उस परमात्मा को नहीं देख सकते क्या है? हमें कितने नए डॉक्टर ने जो आता है सब में रोगी ही देखता है, कोई बीमार है बढ़िया है अच्छा आया, डॉक्टर के पास जो आवे सब में क्या देखता है, कोई न कोई रोगी ही है। आजकल तो आप लोग साइंस के युग में है, कहां स्त्री है कहां पुरुष है बताओ, साइंस युग में कोई स्त्री पुरुष रह गया क्या है? आजकल तो स्त्री को पुरुष बनवा लो और पुरुष को स्त्री बना लो, नहीं, काले को गोरा बना लो, गोरे को काला बना लो, आजकल तो साइंस ने इतनी वो कर लिया है, अब फिर भी हम अपने आप को क्या मान बैठे हैं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये कहां रह गया बताओ। अब ब्राह्मण तो क्षत्रियत्व का भी आज भेद नहीं रह गया, किधर गया है ब्राह्मण क्षत्रिय, अब ब्राह्मण है जूते की दुकान खोले तो क्या कहोगे, ब्राह्मण है क्या? इसलिए मैं तो कहता हूं जो विद्या प्रधान व्यक्ति है, ज्ञान प्रधान व्यक्ति है, वह व्यक्ति कौन है, ब्राह्मण। जो शक्ति प्रधान व्यक्ति है वह कौन है, इसलिए मलेट्री वाले जितने हैं ना वो सब क्या हैं, कोई भी जाति वाला हो लेकिन सबके सब क्या है, क्षत्रिय हैं। और जितने व्यापारी बंधु हैं, धन प्रधान व्यक्ति हैं, वह सबके सब कौन है, वैश्य। और जो सेवा कर्म प्रधान व्यक्ति हैं, वह सबके सब क्या है, शूद्र हैं। और क्या इन जातियों का बंटवारा इसे कर लो, भगवान ने भी कहा है गुण कर्म चातुर्वण्यम अगुण कर्म, गुण कर्म विभाग से ही बंटवारा किया भगवान ने भी। तो क्या महाराज जाति की कोई वैल्यू नहीं क्या, जाति की वैल्यू है, इसी बात नहीं है, नहीं वैल्यू है,
अरे जाति का भी है वैल्यू, ऐसा नहीं है। एक ब्राह्मण का बच्चा जब से पैदा होता है, बेटा गायत्री सुना, कौन सिखा रहा है, संस्कार कौन दे रहा है, घर में ही पूजा पाठ यज्ञ बुद्धि, इसलिए पढ़ने लिखने में ज्यादा निकलते हैं आगे कौन, ब्राह्मण, ध्यान देना। वो मारपीट लड़ाई दंगे में कौन आगे निकलते हैं, जाट हो गए, इसलिए मलतिम जाट बटालियन है, बटालियन है, क्योंकि उनको पढ़ना लिखना ज्यादा नहीं आएगा। ये देख लेना जाट लोग अपवाद सब जगह है, ये नहीं कहता अपवाद, तो देखो विश्वामित्र हमारे क्या थे, क्षत्रिय, और उनमें क्षत्रियत्व था कि ब्राह्मणत्व था, कहां क्षत्रियत्व था, ब्राह्मणत्व था, ब्रह्म ऋषि बन गए। अब हमारे परशुराम जी महाराज क्या थे, परशुराम जी महाराज ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, काट कूट करके सब किनारे कर दिया, तो क्षत्रियत्व आ गया। तो अपवाद सब जगह आपको मिल जाएंगे, इसी बात नहीं है, जो नियम बनाए जाते हैं ना अपवाद को लेकर नहीं नियम बनाए जाते हैं, सार्वभौमिक सबको लेकर के नियम बनाए जाते हैं। ऐसे मैंने देखे हैं वैश्य की माताओं को देखे हैं, औरतों को, एक अक्षर पढ़ी लिखी नहीं है, इन लाखों का हिसाब कर देंगे, सही बता रहा हूं, गिन लेंगे नोट कौन, और क्षत्रिय वो ब्राह्मण एमए पढ़ा हुआ हो, अभी एक गड्डी दे दो ना तो 50 बार गिनेगा, एक आध बार फिर भी, कभी 99 होगा, कभी 98 होगा, कभी 97 होगा, एक एक लगा लगा थूक गिनेगा तब भी गिन नहीं पाएगा, लेकिन वैश्य एक अक्षर नहीं पढ़ा हुआ है तो भी उसको धन के प्रति है जिज्ञासा। तो जन्म से भी कोई न कोई संस्कार बनता है, और कुछ संस्कार कहां से बनते हैं, कर्म से भी बनते हैं, तो चाहे जन्म से बने अथवा कहां से बने, कर्म से बने। जो व्यक्ति विद्या प्रधान है वह सबके सब कौन है, मास्टर लोग कौन है, ब्राह्मण, और जो शक्ति प्रधान है वह सब कौन है, शक्ति, और जो अर्थ प्रधान है वह सब कौन है, 24 घंटे धन की चिंता में डूबे हुए हैं वो सब कौन है, वैश्य, और जो कर्म प्रधान है, कर्म करना है, सेवा बहुत है, वो सब क्या हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। अब देख लेना, चलो तो आजकल जाति कुछ रह गई क्या, वर्ण आश्रम कुछ रह गया क्या, लेकिन इन सबके भीतर जो सत्ता देने वाला, चाहे ब्राह्मण के भीतर ब्राह्मण बुद्धि को सत्ता दे रहा है, चाहे मसल्स को सत्ता दे रहा है, चाहे पेट को सत्ता दे रहा है, चाहे पांव को सत्ता दे रहा है, पांव शुद्ध है, सबके भीतर सत्ता देने वाला परमात्मा क्या है, एक ही है, उस शक्ति में कोई अंतर, बस उस शक्ति को हमने दिमाग में ज्यादा महत्व दे दिया तो हमारा दिमाग ब्रॉड हो गया, उस शक्ति को हमने भुजाओं में ज्यादा महत्व दे दिया तो हमारी भुजाएं पुष्ट हो गई, उस शक्ति को हमने उदर में ज्यादा महत्व दे दिया तो वैसे पुष्ट हुआ, और उस शक्ति को पांव में हमने सत्ता दे दिया तो कौन पुष्ट हुआ, शुद्ध पुष्ट हो गया। लेकिन शक्ति सबके भीतर क्या है, है नहीं, ये नियम है, देखो भाई एक अंधा व्यक्ति है, उसकी इंद्रियों की शक्ति मतलब आंख से बाहर नहीं निकलती तो कहां जाती है, तो उसकी सुनने की क्षमता इतनी ज्यादा होती है कि कदम के ताल से वो पहचान सकता है कौन व्यक्ति आया कौन व्यक्ति गया है, उनके अंदर सूंघने की क्षमता इतनी परिपक्व होती है कि कपड़ा सूंघ करके बता देंगे कपड़ा किसका है, एक बार सूंघ ले में तो उनकी इतनी पहचान होती है, देख के नहीं बता सकते हैं क्योंकि उनकी इंद्रियां देखने में सक्षम नहीं है, तो वो इंद्रियों की शक्ति कहां चली गई, कान और नाक में चली गई, उसके माध्यम से उन्होंने तो, लेकिन शक्ति क्या है, एक ही है, अलग अलग है, तो चाहे हमारी शक्ति पांचों बट गई है और उसने अपनी शक्ति कहां बांट लिया, किसी को दिमाग में, किसी को भुजा में, किसी को उदर में, किसी को पेट में, तो लेकिन शक्ति तो क्या है, वही है, नल का पाइप है, 50 नल लगा दो अथवा एक नल लगा दो क्या फर्क पड़ता है। चलो तो जो व्यक्ति अपने आप को सारे विश्व में देख लेता है वह व्यक्ति क्या था, शोक मोहार अतीतम, शोक और मोह से परे हो जाता है, उसके जीवन में न शोक रहता है न क्या रहता है, मोह होता है। सुक्रम ब्रह्म अध्य गच्छत, वह व्यक्ति न हिरण्यगर्भ विष्णु बन जाता है, हिरण्यगर्भ और सर्वज्ञ हो जाता है, सारी सिद्धियां हाथ जोड़ करके उसके सामने प्रतीक्षा किया करती हैं, फिर उसका संसार में व्यवहार कैसे चलता है, मतलब विस्मित स्थूल सूक्ष्म प्रभृति बपू, स्थूल सूक्ष्म शरीरों को सुषुप्ति के समान वह भूला रहता है, इसे गहरी नींद में किसी भी शरीर की होश रहती क्या,
ऐसे दुनिया में भी वह रहता हुआ सारे शरीरों को उसकी महत बुद्धि समाप्त हो जाती है। इसलिए महत बुद्धि समाप्त हो जाने से सर्व संकल्प शून्य है, वह किसी भी वस्तु का कोई संकल्प, हम किसी वस्तु का महत्व करते हैं तभी संकल्प करते हैं अच्छा है बुरा है। और यदि हमारी दृष्टि में कोई महत्व बुद्धि रह ही न जाए तो बताओ क्या संकल्प रहेगा, क्या विकल्प रहेगा। सारे संकल्पों से शून्य होकर के जीवन मुक्त है वह जीवन मुक्त पुरुष, हमेशा तुरीयम पदम अधिगतवान है, जो चौथा पद है उस पर ही प्रतिष्ठित होता है। पाप पुण्य विहीन है, पाप पुण्य से रहित जो चौथा पद है, जहां न किसी पाप की सत्ता है न किसी पुण्य की सत्ता है, वह व्यक्ति वहीं स्थित रहा करता है। तो आप हमें कहां रहना है, हाँ जान लेना, लेकिन उसके लिए शर्त है सारे संसार को क्या समझना है, अपनी आत्मा। और जिस दिन अपनी आत्मा अब कैसे समझे, युक्तियां बहुत है, मैं बार बार कहता हूं इसको। एक युक्ति है, शीश महल देखा है, शीश महल देखा नहीं, हाँ कांच का होता है, राजाओं के यहां होता, हमने तो नहीं देखा है, ठीक है ना। हाँ एक बार ड्रेस कपड़ा कभी पैंट वेंट पहना था तो एक वो दर्जी एक कमरे में डाल दिया, उसने कहा अपनी फिटिंग देख के बताओ, तो वो छोटा सा कमरे में देख लिया था, आगे पीछे दाएं बाएं दिख जाता है, वही शीश महल मान लो। वो हमारा छोटा सा शीश महल था, और राजाओं के पास क्या होते थे, बड़े बड़े शीश महल। अथवा उस शीश महल की बात छोड़ दो, एक ऐसा देखा होगा कभी कभी जादू का कमरा होता है जहां जाकर के आपको हंसी आती है, वो देखा है नहीं देखा है, हंसी का फब्बारा नहीं देखा है, हमने एक बार देखा, अभी हस्तनापुर में है। और एक बार तो पहले बुद्धा पार्क में लखनऊ में था, लेकिन उसमें कंजूस था तो मैं नहीं गया था, लेकिन अब गया था वहां, आपकी तस्वीर इतनी मोटी बिहने ली, कितनी मोटी, ऐसे दर्पण लगे हैं आपकी तस्वीर कितनी मोटी दिखेगी, इतनी मोटी, एक में आपकी तस्वीर दिखेगी पूरी, कितनी फीट, 12 फीट, एक में तस्वीर सर नीचे पांव ऊपर, एक में तस्वीर आप एकदम राक्षस जैसे दिखोगे, लेकिन सारी तस्वीरों को देख करके आपको क्या आता है, हंसी मजा आता है कि दुख होता है, सही बताओ। मेरे इतनी मोटी वाली तस्वीर देख करके जब मैं चला तो जैसे कोई मोटा आदमी चलता हो इसी चलते हुए दिखी, हमने सोचा मैं अपनी तस्वीर खींच लूं और लोगों को दिखाऊं कि देखो मैं मोटा हो जाऊंगा तो कैसा दिखूंगा, लेकिन उसमें मोबाइल में तस्वीर आई नहीं, लेकिन उन सारी तस्वीरों को देख करके हम क्या हो रहे थे, हंस रहे थे। चलो अब उसी शीश महल में कुत्ता घुस जाए, मान लो शीश महल है, उस शीश महल में क्या घुस गया, कुत्ता, ऑटोमेटिक दरवाजा है, तो कुत्ता दूसरे कुत्ते को देखेगा तो क्या करेगा, तो वो कुत्ता उसको क्या दिखेगा, भुगता हुआ दिखेगा नहीं दिखेगा, इको के कारण तध्वनिक कारण उसको भी भोंकने की आवाज सुनाई देगी नहीं देगी, तो कुत्ता सोचेगा तेरी मजाल तो भोंकता है, एक कुत्ता उसकी तरफ दौड़ेगा काटने के लिए, अब मुंह किसका टूटेगा, और जितनी तेजी से भागेगा उतनी तेजी से वो भागता हुआ आएगा, है नहीं, रिफ्लेक्शन कारण, तो मुंह किसका टूटेगा, इसका, तो भागेगा इधर इधर उधर चारों तरफ, वो कुत्ते से घिर जाएगा, ऐसा ही देखेगा इधर उधर चारों तरफ देख रहा, अब भोंक भोंक करके अपना मुंह दीवारों में मार मार करके वह कुत्ता क्या करता है, मर जाता है। अब उसी शीश महल में प्रेमपुरी का कोई सत्संगी जाता है, अब सारी तस्वीरें अपनी देखता है, कोई मोटा कोई लंबा कोई काला कोई विकृत रूप, सारे अपने मुकुट को ठीक करेगा, सारे अपना रूप देख करके बड़ा आनंदित होकर के वह वहां से बाहर, ते शीश महल जानते हैं कहां है, ये संसार ही शीश महल है, ये शरीर आपके उस शीशे के फ्रेम है, शीशे क्या है, फ्रेम है, इस फ्रेम के भीतर अंतःकरण जो है शीशा है, अंतःकरण क्या है, शीशा है, हमने आपको देखा तो अपनी तस्वीर मैंने आप में डाल दी, और आपके रूप में किसकी अभिव्यक्ति हो रही है, मेरी अभिव्यक्ति हो रही है, इनके देखा मैंने अपनी तस्वीर इसमें डाली, और इनके रूप में किसकी अभिव्यक्ति हो रही है, मेरी अभिव्यक्ति हो रही है, तो सारे संसार के रूप में किसकी अभिव्यक्ति हो रही है, काला मैं, गोरा मैं, लंबा मैं, छोटा मैं, बुढ़ा मैं, यहां तक पशु पक्षी कीट पतंगे जैसे भी शीशे हैं सारी तस्वीरों के रूप में मैं ही तो दिख रहा हूं, तो इन सारी तस्वीरों को देख करके प्रेमपुरी का व्यक्ति क्या होगा, बोलो भाई,
आनंद होगा, वाह क्या मेरा ऐश्वर्य है, क्या मेरा वैभव है, संसार के सब रूपों में कौन दिख रहा हूँ
मैं, देखो किसी बूढ़ी माता को देखो, देखो इसके रूप में भी अपना रूप देखना,
देखना उससे नफरत होना क्या हो जाएगी,
बंद हो जाएगी नफरत। आप करना भी चाहोगे तो कभी व्यक्ति अपने से कभी नफरत करता है क्या, न अपने से नफरत करता न अपने से राग भी करता है, कभी अपने शरीर से नहीं करता कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, किसको करता है क्या, अपने से पड़ोसी को बोल सकता है लेकिन अपने आप को कभी नहीं बोलता है, क्योंकि न अपने से राग होता है न अपने से क्या रहता है द्वेष रहता है, सब में अपने आप आत्मा को देख करके शोक मोह से अतीत होकर के वह चौथे पद पर स्थित हो जाता है, उसके मन के सारे संकल्प शांत हो जाते हैं, इसलिए आप क्या बन जाओ, वह राजकुमार बन जाओ। लेकिन हम राजकुमार नहीं बनते हैं, हम बन जाते हैं क्या, कुत्ता, उसको देख करके अपने से दूसरे को देख करके हम क्या करते हैं, भौंकना शुरू कर देते हैं, तेरी मजाल तू मेरे गली में क्यों आ गया, अब किसका नुकसान करते हैं पता नहीं, उसको नुकसान हम उसके ऊपर भौंक रहे हैं, उसको हमारी भौंकने की आवाज सुनाई देती है अथवा नहीं सुनाई देती पता नहीं, लेकिन अंतःकरण किसका दुखी हो रहा है, भाई हमें सोनिया राहुल नहीं पसंद है, अब हम बड़ी निंदा कर रहे हैं, पता नहीं मेरी निंदा की आवाज वहां तक जाती नहीं जाती भगवान जाने, लेकिन अंतःकरण किसका कलुषित हो रहा है, मेरा ही हो रहा है, तो बताओ हम उस कुत्ते की तरह हो गए नहीं हो गए, तो इसलिए कुत्ता नहीं बनना है, इसलिए यहां बता रहे हैं आगे दूसरी पंक्ति में ध्यान देना, यहां बहुत सूक्ष्म निरूपण किया गया है, अथ माने इसके अनंतर दूसरी पंक्ति मिला ना, एसाम स भवति आत्मा, समाने वह उन देवताओं का भी आत्मा बन जाता है, इसलिए देवता लोग उसका पराभव नहीं करते, लेकिन अथ माने इसके बाद इसके अनंतर, यो माने जो कोई पुरुष अन्याम देवतां उपासते, अन्य देवता की उपासना करते हैं, इस रूप से अन्यो अहम अन्यो असौ, वह देवता अन्य है मैं अन्य हूं दूसरा हूं, अन्यस्य इत्थम नो वेद, वह जानता ही नहीं है, न जानने से पशुवत स, वह व्यक्ति किसके समान है पशु के समान है, क्योंकि अपने स्वरूप को जाने बिना जो कोई भी व्यक्ति कर्म करता है सब कर्म पाप ही हुआ करता है, इसलिए अपने आप को जान करके जो व्यक्ति कुछ भी कर्म करता है वह कर्म ही अच्छा होता है, अपने आप को बिना जाने जो कर्म करता है वह सारे के सारे कर्म क्या है पाप ही है, पशु के ही तुल्य है, क्योंकि भाई देखो उस कभी कभी उसमें आता है एक, देखो बड़ी स्थिति ऊंची है, एक रमन महर्षि का ग्रंथ है उपदेश सार, सुना होगा उपदेश सार, वहां एक बताया गया है उत्तमस्तवात उच्च मंदत चित्तजम जप ध्यानम उत्तमम, ठीक है ना, स्तुति करना बहुत अच्छी बात है, करो खूब करो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय, खूब करो स्तुति करना, ठीक है, लेकिन स्तुति से भी अच्छा है जाप करना, क्या करना, स्तुति से अच्छा है जाप करना, ध्यान देना, एक प्राइमरी का बच्चा बोल बोल के पढ़ता है तो बड़ा अच्छा लगता है ना, लेकिन बीए का बच्चा एमए का बच्चा बोल बोल के पढ़ाई करे तो क्या कहोगे यार, तू अभी प्राइमरी में बैठा हुआ है, अच्छा लगेगा क्या, अच्छा हम स्तुति भी करते हैं तो स्तुति भी हमें नहीं करनी आती, भी बताऊं आप स्तुति करते हो क्या, हनुमान चालीसा जो पढ़ते हैं ना, हमने देखा है स्तुति नहीं करते, कोटा पूरा करते हैं, रोज का नियम बनाए हैं इसलिए पूरा करना है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय पिष्णुजागर रामदूत वृंदावन पुत्र महावीर विक्रम, इतनी जल्दी जल्दी क्या बोल रहे हैं भगवान, हनुमान जी कान लगा के सुनते होंगे क्या क्या बोल गया है मेरे बारे में, अरे जो गाओ जो कहो भाव से गाओ उसका अर्थ हमारी बुद्धि में आता रहे तो स्तुति फायदेमंद है, नहीं तो आप सारी जिंदगी करते रहो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैंने इसे बहुतों को देखा, 10 श्लोक रामायण के, 10 गीता के, 10 महाभारत के, 10 युग वशिष्ठ के, 10 उसके वो कोटा बनाए हुए, वो पढ़ते हैं तोते की तरह रख डालते हैं, लेकिन उसमें क्या लिखा है क्यों लिखा है किस लिए लिखा है उसका मतलब आज तक मालूम, तो स्तुति करना अच्छा, उत्तम स्तवाज उच्च मंद जाप भी करो, जाप में उच्च स्वर में जाप, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय,
फिर मंद स्वर में जाप करना, उच्च स्वर से जाप से मंद स्वर में अच्छा है। अब मंद से भी अच्छा है चित्तजम जप, चित्त में उसका एक जप चलता रहे। आज जिसका जाप चल रहा है जाप करना भी छोड़ दो। ध्यानम उत्तमम, क्या अच्छा है? सबसे बढ़िया ध्यान करना है, लेकिन ध्यान से भी अच्छा है ध्यान ना भेद भावनात। ध्यान भी दो तरह से है, एक तो क्या है विरल चिंतन है, ध्यान करते हैं बीच बीच में संसार आ जाता है, तो क्या करना विरल चिंतन से अच्छा है सरल चिंतन, एक लगातार सहज चलता रहे चिंतन, उससे भी अच्छा। ध्यान देना दो ध्यान है, एक भेद भावना से एक अभेद भावना से। जो भेद भावना से ध्यान किया जाता है उस ध्यान से भी अच्छा है ध्यान कौन सा, अभेद भावना से ध्यान करना। अब बाद में ध्यान भी करना छोड़ देना, भाव शून्य सद्भावस्तु स्थिति ही, हर प्रकार के विचारों से शून्य सद्भाव, मतलब अपने सत्ता स्वरूप में जो स्थिति है वह स्थिति ही ज्ञान का फल है, भक्ति का फल है, योग का फल है, वहां निष्ठ हो जाना, उससे श्रेष्ठ दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। इसलिए यहां बता रहे हैं कि जो अन्य देवता को अन्य रूप से, अब मैं अन्य हूं मैं उपासक हूं वह मेरा उपास्य है इस भाव से पूजा करता है, न वह अपने स्वरूप को जानता है न वह देवता के स्वरूप को जानता है। और देवता और अपने स्वरूप को न जानने से वह व्यक्ति कैसा है, पशुवत सह, वह व्यक्ति पशु के ही तुल्य है, उसमें या पशु में कोई अंतर है ही नहीं। इसलिए भाई उस परमात्मा को जानो, किस रूप से जानो, इदम रूप से कि अहम रूप से, अहम रूप से, लेकिन अहम रूप से जानोगे तो हर रूप में उसी का ही चिंतन रहेगा। फिर उस परमात्मा को जानने के लिए देखने के लिए कहीं आने जाने की भी वृत्ति क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। एक उत्तर गीता है उसमें मैंने हिंदी में भी लिखा है, वहां आता है कि अग्नि देवो दुजाति नाम, द्विज के लिए अग्नि ही देवता है, द्विज के लिए क्या है अग्नि ही देवता है। मुनि नाम हृदय देवता, मुनि लोगों के लिए हृदय में ध्यान कर रहे हैं बैठे, कहां हृदय में ध्यान कर रहे हैं। ये सब तरीका आगे बताया जाएगा, यहां भी आएगा। कहते प्रतिमा स्वल्प बुद्धि नाम, प्रतिमा में ही केवल भगवान दिखते हैं, किसको दिखते हैं, स्व अल्प बुद्धि नाम, असर्वत्र ज्ञान दक्षिणा है। प्रेमपुरी वालों के लिए भगवान कहां दिखता है, सब जगह दिखता है, कहां नहीं भगवान है बताओ। अच्छा भगवान यहां दिख गया तो उस भगवान को देखने के लिए कहां जाओगे, सब जगह वही तो दिख रहा है, इसलिए वहां आता है, वही उत्तर गीता में ही आता है। तीर्थानि तोय पुराणि, जितने भी तीर्थ हैं वहां क्या है, जल ही भरा है और क्या है, देवान पाषांग मृणमयान है, जितने भी देवता हैं क्या है, पाषांग है, मृणमयान है, पत्थर अथवा मिट्टी के बने हैं और क्या है? वो तो सारा वैभव है किसका, कितना मंदिर आप सुंदर करा दो, चाहे एक वहां दिल्ली में कायम होना है, वो स्वामी नारायण का एक मंदिर बना है अक्षरधाम दिल्ली में, अब उसी मॉडल में सहारनपुर में अक्षरधाम बन रहा है, एक सहारनपुर का ही कोई भगत था अफ्रीका रहता है, कई करोड़ सौ करोड़ दान दिया है, देने वाले बहुत हैं, मंदिर भी बहुत बन रहे, बनते रहेंगे। देवान पाषांग मृणमयान, योगिना तत्र न प्रपद्यन्ते, ये ध्यान देना कौन योगिना तत्र न प्रपद्यन्ते, आत्मज्ञान परायणाह, जो आत्मज्ञान परायण योगी हैं वो तो यहां ही बैठे बैठे भगवान दिख जाते हैं सर्वत्र। दूसरी चीज और मैं बताऊं, आजकल इतनी भगदड़ मच जाती है, मैं मना नहीं करता, नवरात्रि में जाना चाहिए भगवान के पास, शिवरात्रि में जाना चाहिए, लेकिन किसके लिए, जो कभी ना जाता हो उसको कब जाना चाहिए, शिवरात्रि में जाए, क्योंकि वो आदत तो बनावे जाने के लिए, समय निकालने के लिए, जो हमेशा उसी में रमण करता है, बल्कि उस दिन तो उसको अवसर देना चाहिए, भैया तू देख ले, पता लगा मैं भी लाइन लगा लिया तो तू लाइन के चक्कर में और नहीं आएगा, इसलिए तू देख ले, मैं दूर से ही भगवान को प्रणाम कर लेता हूं, क्योंकि भगवान यहां भी तो मौजूद है, नहीं मौजूद है बता, नहीं मौजूद है, सब जगह परमात्मा मौजूद है, किसी भी रूप में आप उसको देखना चाहो तो आप क्या कर सकते हो,
अनुभव कर सकते हो, साक्षात कर सकते हो। तो योगिनः तत्नप्रपद्यन्ते आत्मज्ञान। अब एक बोलना नहीं चाहिए लेकिन अब आ गया है मातृदेव, क्या है मदस डे, ये विदेश की परंपरा में फादर्स डे और हस्बैंड्स डे ये सब आ गए है नहीं। हाँ वो है नहीं, वो करवा चौथ किसका दिन है, हस्बैंड्स डे वाइफ डे भी नहीं आया। ध्यान देना महत्व क्या है, ध्यान देना इसका मैंने पहले, हमारे यहां भारत के नियम नहीं है, हमारे यहां तो रोज मदर्स डे होता था, रोज बच्चा घर से जाता था बाहर तो मां के पांव छू के जाता था, आता था तो मां को पांव के छूता, मां के सामने बोलता नहीं था। जो बच्चे मां बाप से कोई मतलब नहीं रखते थे, कोई भी मतलब, कसम एक दिन तो उनका नाम है ले ले, एक दिन तो गिफ्ट दे दे, एक दिन तो मां बाप के पास मिल ले, इतने नियम बनाया गया। हमारे भारतवासियों के नहीं नियम है, इसलिए मैं कहता हस्बैंड डे कोई पत्नियों के लिए कोई पति का दिन था ही नहीं, रोज ही पति का दिन था, पति ही उसके लिए सब कुछ था, नहीं था। लेकिन जो साल भर गाली देवे, साल भर लड़ाई करे, कम से कम एक दिन उसका तो हो जाए बेचारे का, कहता आज तो छोड़ दे बकस दे, आज तो मेरा दिन है, इसलिए उनका दिन बनाया गया। लेकिन हमारी भारत की परंपरा में क्या है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथिदेवो भव, आचार्य देवो भव। हमारे भारत की परंपरा में तो पीपल में परमात्मा, सुअर में परमात्मा, चींटी में परमात्मा, मछली में परमात्मा, ऐसा कौन जीव नहीं है जिसको हम रोटी न खिलाते हो, बताओ है कोई जीव। अरे नाग जैसे हिंसक जीव को भी हम क्या करते हैं, बताओ कितनी बड़ी व्यापकता, ऐसी व्यापकता कहां होगी बताओ। सबको पूछते हैं, बबूल को भी पूछते हैं, बेद को भी पूछते हैं, आंवले को भी पूछते हैं, कौन सा ऐसा वृक्ष है जिसकी हम पूजा, अरे आक मदार को भी हम पूछते हैं, मदार होता ना। तो हमारी दृष्टि एक वृक्ष को पूजने में नहीं है, बल्कि सबके रूपों में कौन आया है, वह परमात्मा है। ये भावनाओं को इस कारण से मजबूत होती है, इसलिए हम सबकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। आगे का विचार हम लोग, महाराजी जो आप बोल रहे हो इसमें कोई प्रमाण है कि अपनी मनमानी ही बोल रहे हो, तो भाई मैं मनमानी नहीं बोल रहा हूं, इस विषय में क्या दूंगा प्रमाण, उपनिषद का प्रमाण है, श्रुति भगवती का प्रमाण है, भगवान ने कहा है कि ज्ञानी तू आत्मा एव मम, ज्ञानी तो मेरी अपनी क्या है, आत्मा ही है। इस तरह से निश्चय कराऊंगा, और फिर संसार में व्यवहार आपका कैसा चलेगा वो भी मैं बता दूंगा, संसार में जीवन मुक्त होकर कैसे जियोगे ये भी जीने का एक तरीका भी बता दिया जाएगा। ये सब चर्चा कब करेंगे, आगे, कल से आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।